السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. हम सब की चाहत है कि जन्नत हमारी मंजिल बन जाए। जब हम कुरान करीम में जन्नत के बारे में आयात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल मचलता है कि वो कौन सा दिन होगा जब मैं भी जन्नत में चली जाऊँ। और हर एक ने अपने अपने तसव्वुरात में कोई जन्नत बनाई होती है। कोई वो बेहद हसीन जगह है जहाँ पे हर चीज़ जैसे हम बेस्ट सोच सकते हैं, वो तमाम नेमतें और खुशियाँ और चैन और सुकून, हर चीज़ जो हमारे शौक की है, जो हमारे तसव्वुर में कभी आ सकती है, वो सोच के हम एक ऐसी दुनिया जहन में बसा लेते हैं कि वो होगी जन्नत। और उसके बाद हसरत से एक आह निकलती है कि काश मैं भी जन्नत को पा लूँ। तो जन्नत को पाना नामुमकिन नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अम्बिया को ही मिलनी है, औलिया अल्लाह को मिलनी है, और बाकी किसी को वहाँ तक पहुँचने की कहाँ कोई सोच सकता है। कोई बहुत ही दूर की कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जन्नत का इतना शौक ना दिलाया जाता, जन्नत की इतनी बातें ना की जाती। कुरान करीम में जगह जगह बताया गया कि जन्नत जैसी आइडियल जगह को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ना बताया जाता। क्योंकि अगर सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही देनी होती ये जन्नत अल्लाह ताला ने, तो फिर सिर्फ उनको बता दिया जाता। लेकिन ये रास्ता खुला है सबके लिए, जो चलना चाहे, जो इस जगह तक पहुंचना चाहे। अब होता ये, जब हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? मतलब दुनिया में ही हमने किसी जगह पहुंचना है तो पहले हम रास्ते का तायुन करते हैं, फिर उस रास्ते के ऊपर चलते हैं। यानी पहले तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं ना कौन सा रास्ता है उसका, फिर उस पर चल पड़ते। जैसी डायरेक्शन दी जा रही होती है, बगैर इधर उधर कहीं टर्न लिए हुए, हम सीधे उसको फॉलो करते हैं। हमें ये होता है कि कहीं हम गुम ना जाएं, खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम पहली दफा गए हैं। मतलब आप किसी और मुल्क में गए हैं तो आप कभी ये नहीं कहेंगे चलो ये भी टर्न लेके देख लूँ ये कहाँ जाता है, वो रास्ता लेके देख लूँ वो कहाँ जाता है। नहीं, आपने जहाँ पहुँचना होता है बिल्कुल उसके मुताबिक डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, थोड़ा इधर उधर नहीं होते। तो फिर सोचें, ये तो बेवकूफ़ी होगी कि अगर मैंने मसलन जाना न्यूयॉर्क हो और मैं कहूँ हाय रास्ता तो बड़ा मुश्किल है मगर बस मुझे पहुँचना है और बस अल्लाह ताला मुझे पहुँचा दे, और मैं ना अपने बिस्तर से उठूँ, ना रास्ता मालूम करूँ, ना ही उस पे चलूँ, और बस अपने ख्यालों के अंदर न्यूयॉर्क पहुँची रहूँ। और अगर रास्ता मालूम कर भी लूँ मगर चलने को ही तैयार ना हो, फिर भी पहुँच नहीं सकती। और अगर चल पड़ूं और चलते चलते भी कोई और टर्न ले लूं कि वो भी कोई अच्छा रास्ता लग रहा है, चलो इस तरफ को जाके देखती हूं, तब भी नहीं पहुंच सकूंगी। दुआ तो हम जरूर करते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला के इज़न के बगैर कोई कुछ नहीं पा सकता, मगर ये भी हमें ही कहा गया है कुरान में कि खुद उठो चलो, साबिकू सारेऊ, सबकत ले जाओ, जल्दी करो, दौड़ो। तो दुआ तो करेंगे इसलिए कि बेशुमार चीजें हैं जो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, जो रुकावट बन सकती हैं। लेकिन उसके बाद, दुआ करने के बाद हम एफर्ट भी तो करेंगे, हम चलेंगे भी तो सही। हमें दुनिया के मामले में ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि एक बच्चा इम्तिहान की तैयारी नहीं करता तो वो कैसे पास होगा, सोया रहता है, खेलता रहता है। फिर आप सिर्फ दुआओं पे इक्तफा नहीं करते, दुआ आप जरूर करते हैं लेकिन साथ बच्चे को कहते मेहनत करो। हम दुनिया में कहीं जाना भी चाहते हैं तो तब भी हम दुआएं भी करते हैं, या अल्लाह ताला खैर से पहुंचा देना, लेकिन साथ हम उठ के चलते भी तो हैं या बैठे रहते हैं। लेकिन आखरत में जन्नत की मंजिल जो ऐसी खूबसूरत जगह है जैसी कोई जगह नहीं, हमारी ख्वाबों की दुनिया, उसको पाने के लिए हम कुछ भी ना करें और बस वो ऐसे ही हासिल हो जाए, ये तो बेवकूफी है। तो हम रियलिस्टिक बने, इसके लिए हमें प्लान भी करना पड़ेगा, जन्नत का रास्ता भी देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता है और कैसे पता चलेगा, ना मैं बता सकती हूं ना किसी और को पता है, ये हमें अल्लाह ताला ही बताएगा। और अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जगह जगह बता दिया कि ये जन्नत किन लोगों के लिए है। तो जैसे हम किसी भी ट्रिप के लिए प्लानिंग करते हैं, कोई इवेंट भी आ रहा होता है तो हम उसके लिए भी काम करते हैं, शादी हो, कहीं वेकेशन पे जाना हो, कहीं कुछ करना हो, भागते फिरते हैं, प्लानिंग होती है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। लेकिन जन्नत के लिए हमने बस छोड़ा हुआ है कि बस खुद ही मिल जानी है, और ये सोचते रहते हैं क्या करें, टाइम नहीं है, सारा दिन गुजर जाता है हमारा तो बस पता ही नहीं चलता, दिन का काम ही खत्म नहीं होते। औरतें ये कहती हैं, मर्द ये कहते हैं, हमें जॉबों से फुर्सत नहीं, सर को जाने का वक्त नहीं। तो वो कौन सा टाइम आएगा और वो कौन सा फुर्सत का वक्त आएगा जिसमें हम सीरियसली सोचेंगे कि जिस तरफ हम अपनी एंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं वो तो एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए अगर प्लानिंग ना की तो नाकामी है। हमने दूसरे शहर में भी मूव होना हो तो कोई प्लानिंग करते हैं, जबकि वो तो पूरी टोटली एक ऐसी अलग दुनिया है जो हमने कभी नहीं देखी। फिर हम क्यों अपने आप को धोखा देते हैं, क्यों हमें नजर नहीं आता, क्यों हम दीवाने हो गए हैं, क्यों हमारी सारी अकल यहाँ के लिए और वहां के लिए सब भूला हुआ है, हमारी नजरों के आगे पट्टी बंधी भी है, हमारा दिमाग बंद हो चुका है क्योंकि हम अपनी हमेशा की जिंदगी को सोचना भी नहीं चाहते। तो हम जागें, जिस एज में भी हम हैं हम जागें, हम बहुत सो लिए, कुरान से रास्ता मालूम करें और देखें ये हमारा GPS है, ये हमारा रोड मैप है जन्नत का, अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बता दिया है, दिखा दिया है, अब चलना हमारा काम है। रास्ता देखना भी काफी नहीं है कि रास्ता पता चल गया अब उसके बाद हम सो जाएं, रास्ता मालूम करना क्या फायदा होगा अगर उसके बाद हम सो गए तो, उसके बाद उठ के चलना पड़ेगा। अब हम हिम्मत बांधे कि हमने अब इसके ऊपर चलना भी है और इसके लिए हिम्मत तो करनी होगी, बहुत सारी चीजों को नो कहना होगा तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे तो इस तरफ को आ जाओ, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, लेकिन जब हमें पता है कि ये अलाउड नहीं है, मुझे इस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो नो कहने के लिए जुर्रत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं इधर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत सारी जगह पे नो कहना होगा तब जन्नत के रास्ते पे चल सकेंगे। क्योंकि जन्नत का रास्ता है ही मुश्किलात से भरा हुआ, किसने कह दिया जन्नत आसान है, जन्नत आसान नहीं है, मुश्किलात में घिरा हुआ इसका रास्ता। हाँ जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे फिर आसानियां ही आसानियां, आराम ही आराम है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी लोग नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग आपको मे बी छोड़ भी जाएं, बहुत सारे लोग आपको रोकें भी इस रास्ते पे जाने से, लेकिन हमें अपने आप से खैर ख्वाही करनी है, अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, और ये कोई और नहीं हमारे लिए कर सकता, हमें खुद ही करना होगा। तो जरूरत इस बात की है कि इस रमजान में हम इस बात को सोचें कि मैंने अब अपनी जिंदगी के रंग ढंग बदलने हैं, मैंने कुरान को समझना है, मैंने उसे रास्ता देखना है और अपनी जिंदगी को रीशेप करना है। जिंदगी चूंकि ऐसे ही गुजरती जा रही है और यही हम रोज कहते हैं, रोज उठते हैं कहते हैं हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कल करेंगे परसों करेंगे, परसों करेंगे तरसों करेंगे, बस जरा सी फुर्सत मिल जाए तो कर लेंगे, बस ये जरा सा काम हो जाए तो कर लेंगे, यही इसी तरह टालते टालते वक्त गुजरे जा रहा है और हम किसी और दुनिया में हैं शायद, कि हमें समझ नहीं आती कि हमारी सांसें भी काउंटेड हैं, गिनी हुई हैं, गिनती की हमें मिली हैं, ऐसी अनलिमिटेड नहीं मिली भी, हमारी हर चीज़ जो हमें मिली वो एक वक्त के लिए मिली भी है, हमेशा के लिए नहीं मिली भी, इसके जो हमें वक्त मिला है, जो हमें ज़िंदगी मिली है, इसको हमने ऐसे गुजारना है कि कहीं ऐसे ना हो जाए कि ये ज़ाया हो जाए और फिर हम इसके ऊपर पछताएं। तो इस लिमिटेड लाइफ में ही हमने वो सामान जमा करना है जो हमें आगे काम आना है, आज ना जमा किया तो दोबारा तो नहीं ज़िंदगी मिलनी कि अब आप जाओ अब जाके अब जन्नत के लिए सामान जमा कर लो, पहले तो आपने ज़िंदगी ऐसे गुजार दी थी, अब आप जन्नत के लिए एक और ज़िंदगी हमें मिल जाए, तो दूसरी तो मिलनी नहीं, इसी के अंदर हमने काम करना है और ये बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है, बहुत जल्दी चली जाती है। जाइए बैठिए किसी बूढ़े के साथ, प्लीज़ ज़रूर बैठे, कोई 70+ हो गया उसके साथ बैठ के देखें और उनसे पूछें कि ज़िंदगी कहाँ चली गई, तो वो आपको ज़रूर कहेगा ज़िंदगी ऐसे गुजर गई कि पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई, कल तक अभी मैं जवान था, कल तक अभी मैं बच्चा था, मुझे अभी तक ये बात भी याद है, मैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ जाया करता था, मेरे कॉलेज में ऐसे होता था, मेरे स्कूल में ऐसे होता था, अल्लाह अकबर, इस तरह ज़िंदगी गुजर जाया करती है, फिर इंसान पीछे देखता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो ये जो सांसें अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, इनकी कदर करें, और कभी तो यहां तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी खत्म हो जाती है, जो 70 को भी पहुंच गया वो गनीमत जाने। जानते हैं सहाबा करम जब 40 के हो जाते थे ना, तो कहते थे कि बस अब काफी काफी हमने वक्त गुजार लिया, अब हमें आखिरत की तैयारी करनी है। वो 40 के हिस्से को बहुत बड़ा समझते थे, वो सोचते थे कि 40 साल की जिंदगी हमें मिल गई, बहुत वक्त मिल गया, अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। अब इमाम इब्ने हब्बान फरमाते हैं, जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो आसमान से मुनादी करने वाला कहता है कूच करने का वक्त करीब आ पहुंचा है, अपना ज़ादे राह तैयार कर ले। सोचे वो अपने जहन में ऐसे सोचते थे, ये नहीं कि वाकई ऐसा कोई होता है, लेकिन वो अपने जहन में सोचते थे कि बस अब तो जाने का वक्त है, अब ये जो अगला टाइम है ना ये बोनस है। तो हम में से तो कितने हैं 40 के हो चुके हैं या होने वाले, तो इस तरफ को तवज्जो है, ये ना सोचे मैं 40 की होंगी तो करूंगी, 40 के होके भी नहीं होश आना। फिर इब्राहिम नखी कहते हैं सहाबा दुनिया की तलब में लगे रहते थे, लेकिन जब 40 साल की उम्र तक पहुंचते थे तो आखिरत की तलब शुरू करते थे और आखिरत की तरफ ज्यादा तवज्जो करते थे। अब तो 40 भी किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तो बहुत यंग यंग एज में लोग जा रहे हैं, कभी कब्रिस्तान जाके देखें लोगों की कतबों पे लिखी होती है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। तो हम तो ये कहते हैं ना सिर्फ अभी तो मैं 40 साल की हुई हूँ, अभी तो मेरी कोई उम्र ही नहीं है। क्या क्या अपनी बर्थडेज मनाते हैं, 50 के होके, 55 के होके, 60 के होके, अभी तो हम यंग हैं और यंग ही बनने की कोशिश करते रहते हैं, पर इस तरफ तवज्जो नहीं करते कि जाने का वक्त है, अभी तो बोटॉक्स लगाने के दिन है, अभी तो टीके लगा के और हमने ज्यादा खूबसूरत होना है, अभी तो हमने सर्जरीज अपनी करानी है, अभी तो हम जवान हैं, जो मर्जी कह लो, हमारे ऐसा करने से वक्त रुक नहीं जाएगा। और जिंदगी के साल वापस नहीं आ जाएंगे। तवज्जो दें इस तरफ जिस तरफ जाना है, ना कि इस तरफ की जिधर रह रहे हैं। हम अपने आप को शायद यही बहलावे देते रहते हैं, रहना है रहना है रहना है, और हर गुजरता दिन हमें याद करा रहा है कि जाना है जाना है जाना है। तो जाने की भी तैयारी करें। सिर्फ एक वो जात है जो अलवासिया है, अनलिमिटेड। उसकी ना जिंदगी का कोई एंड है ना कोई शुरुआत थी। अल्लाह ताला का ये नाम अलवासिया बहुत प्यारा नाम है। उसकी तमाम सिफात में वुसत है, इंसान के पास नहीं है वुसत। उसकी ना जिंदगी में वुसत, ना उसकी जवानी में वुसत कि वो अनलिमिटेड मिली हो। लेकिन अलवासे इंतहाई वुसत वाला, इंतहाई कुशादगी वाला, फराखी वाला, वो गनी जात है जिसकी सखावत उसके तमाम बंदों के लिए काफी है, जिसका दिया हुआ रिस्क मखलूकात के लिए वसी है। अलवासे जो अपने फजल में वुसत रखता है, जो अपनी रहमत में वुसत रखता है, यानी उसमें फजल अपना इनायत करता रहता है, खत्म नहीं होता। वो अपनी रहमतें फैलाए रखता है, वो खत्म नहीं होती। कोई चीज उसको थकाती नहीं है, वो दे दे के थकता नहीं है। उसकी रहमतें हर चीज को ढांपा हुआ है। तो उसका नाम देखे, अल्लाह ताला अलवासे है, अल्लाह हू अकबर। और उसी की जात अलवासे है, कोई और नहीं है। तो उसका ये नाम देखें, उसका ये नाम इतना प्यारा है अल्लाह ताला का, कि जब हम इस नाम को देखते हैं ना, तो हमें बहुत होप मिलता है। एक तो उम्मीद कि उसकी रहमत में इतनी वुसत है, उसकी बख्शिश में इतनी वुसत है, जो बेकरारों की दुआओं को सुनता है और उनको अता करता है, जो जब से उसने पैदा किया इंसान को, तब से इंसान क्या अपनी सारी मखलूक को खिला रहा है, पिला रहा है, संभाल रहा है, कितनी वुसत है उसके अंदर। लेकिन इंसान इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेता है, अल्लाह ताला की वुसत को, और देर करता है उसकी तरफ जाने में। हालांकि इंसान को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास वुसत नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। अल्लाह ताला अपने इल्म में भी अलवासे है, उसके इल्म के समुंदर का कोई किनारा नहीं है। अगर उसके कलेमात को लिखा जाए तो समंदर भी खत्म हो जाए, सब समंदर स्याही बन जाए, और तमाम दरख्त दुनिया के कलमे बन जाए, तो कलमे घिस घिस के खत्म हो जाए और स्याही खत्म हो जाए, और इतनी और सात समंदर और लाए जाए। सोचे इंसान, जिन, पैगंबर, सब मिलके लिखना शुरू करें, लिखते जाए लिखते जाए। फरिश्ते भी लिख रहे हैं, इंसान भी लिख रहे हैं, जिन्नात भी लिख रहे हैं, सब लिख लें, अल्लाह ताला की बातें खत्म ना हो। वो ऐसा अलवासे है, और उसके एहसानात कितने ज्यादा हैं, यानी वो इतना अलवासे है, देता जाता है। कितनी उसने हम पर नवाजिशें की हैं, कितने एहसानात किए हैं, गिन सकते? नहीं गिन सकते ना, अनगिनत। हम कहते हैं ना अनलिमिटेड, क्योंकि वो अलवासे है। हमारा दिल साल में जानते कितनी दफा धड़कता है? 38 मिलियन टाइम्स। हार्ट बीट चलती है हमारी 38 मिलियन टाइम्स। सुबहान अल्लाह, यानी सिर्फ दिल के धड़कने के ऊपर ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अगर अदा करें ना, बाकी नेमते तो बाद की बात है। यही काफी होना चाहिए हमारे लिए कि हम उस जात से मोहब्बत करने लगें जो हमारे दिल को धड़का रहा है, बगैर हमारी मेहनत के, बगैर हमारी कोशिश के। हमारे हाथों में भी हमारा दिल दे दिया जाता ना कि इसको धड़काना है तुमने, तो हम यही काम करते रहते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक लम्हे को भी हम छोड़ते तो हम खत्म हो जाते, तो हमारे हाथों में दे दिए जाते। सबने अपने दिलों को धड़काना, बस बैठे रहते, अब यही काम करते रहते। लेकिन बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी कोशिश, बगैर किसी तवज्जो के हमारा दिल हर सेकंड धड़क रहा है। और ये ऐसी चीज है कि अगर जरा देर के लिए ना धड़के तो हम सब कुछ छोड़ के मछली की तरह जमीन पे तड़पना शुरू हो जाए और हमारी एक ही पुकार होगी, हाय सांस, हाय सांस, हाय सांस। कोई हमें मिलियन डॉलर भी देगा ना तो हम कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सांस दे दो। ये सिर्फ एक नेमत है उसकी बेशुमार नेमतों में से, उस अलवा से की जो हमें बिन मांगे मिली नहीं है। हम अगर 38 मिलियन टाइम्स भी उसका शुक्रिया अदा करें तो काफी नहीं है, इसलिए कि उसने ये जो तौफीक हमें दे दी होगी ना शुक्र अदा करने की, वो भी एक बड़ी नेमत है। मैंने आपको बताया था ना कि अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी एक उसका एहसान है और उसकी एक दीवी नेमत है जो आपको मिली कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कह सके, वरना हर एक को ये भी नहीं मिलती तौफीक। तो जो नेमतें उसने हमें दी हैं वो इतनी ज्यादा हैं क्योंकि वो अलवासे है और इनका वो बिल नहीं लेता। फिर उसकी मखलूक को देखें, कितनी मखलूक है उसकी, कितनी मखलूक, हर तरफ देखें उसकी मखलूकार फैली हुई है, जिधर हमारी नजर, जिन चीजों को हम जानते हैं वो भी उसकी मखलूक है, जिनको हम नहीं जानते वो भी उसकी मखलूक है। एक-एक फरिश्ता है जो कितने कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े फरिश्ते जो हर वक्त मसरूफ अमल हैं, लेकिन वो कितने हैं, कितने हैं सोचे कि ये जब हमें हदीस मिलती है कि वो फरिश्ता, फरिश्तों की तादाद इतनी है कि अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर जो आसमानों पे अल्लाह का घर है, सातवें आसमान पे अल्लाह सुबहाना ताला ने उसके भी तवाफ करने के लिए फरिश्तों को लगाया हुआ है, जो एक दिन में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, और जिनकी एक दफा बारी आ जाए दोबारा उसकी बारी नहीं आती उस फरिश्ते की। वो कितनी उसकी मखलूक है, कितने उसके फरिश्ते हैं, क्या इनकी गिनती हम जान सकते हैं? क्या हम कभी समझ सकते कि उसकी मखलूक कितनी? ये सिर्फ अभी फरिश्तों की बात हो रही है, और तो हम क्या जानेंगे, हम तो इतना भी नहीं जान सकते कि कितने करोड़ों फरिश्ते हैं। वमा यालमु जुनूदा रब्बी का इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हम तो जमीन की चीजों को भी नहीं आज तक जान सके कि कितनी उसने यहाँ पर अपनी खलाकी के निशानात बनाए हैं, कितनी उसकी मखलूक है यहाँ पर। फिर उसका इल्म कैसा है, उसकी इल्म में कितनी वुसत है, वसे रब्बी कुल्ला शयइन इल्मा, मेरे परवरदिगार का इल्म हर चीज का अहाता किया है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं। फिर उसकी कुदरत, एक अनलिमिटेड कुदरत का मालिक है, नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, हर चीज पर कादिर है, कितनी वुसत है उसकी कुदरत में। फिर उसकी रहमत देखें, रहमती वसेअत कुल्ला शयइन, आता है कि मेरी रहमत हर चीज पे छाई हुई है, यानी इस पूरी अपनी मखलूक को उसने अपनी रहमत से ढांपा हुआ है, एक लम्हे को भी उसकी रहमत अगर हट जाए तो कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर सकती, कोई चलता फिरता नहीं तुम देखोगे इस जमीन के ऊपर, कोई जानदार नहीं रह सकेगा, कोई जीरू नहीं होगा अगर उसकी नजरे करम हट जाए तो। ये जो कायनात चल रही है उसकी वुसत या उसकी कुदरत, आप उसकी कुदरत का कैसे अहाता करें, ये कायनात में कितने बड़े बड़े सितारे सैयारे चल रहे हैं, उस एक तो कायनात को देख के पता चलता है उसकी वुसत। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि साइंसदान दंग हैं कि ये कायनात कितनी बड़ी है, हम तो आज तक इसका किनारा ही नहीं जानते, उन्होंने तो गिव अप कर दिया, वो कहते हम नहीं जानते, हमें जो जितना पता है ना वो भी बहुत वसी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अभी तक सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिली, अभी जाना तो खैर दूर की बात है, सिर्फ हमें ये पता चला है कि ट्रिलियन ट्रिलियन उनकी गिनती खत्म हो गई है, वो कहते इतने सितारे सैयारे सिर्फ इतने ही सी के अंदर है, और इतनी वुसत उसकी कायनात में अलवा से है, अल्लाह हु अकबर। और उसके ऊपर उसकी मिल्कियत, और उसकी कुदरत और उसका इल्म और उसकी रहमत ने घेरा हुआ है सारी अपनी मखलूक को। सुभान अल्लाह, इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरे रब की मगफिरत बड़ी वसी है। उसकी रहमत और उसकी मगफिरत में भी, उस वो जो यानी माफ करना है उसका, उसमें भी इतनी वुसत है कि इंसान अल्लाह हु अकबर सोच नहीं सकता कि कितनी वुसत है उसकी रहमत के अंदर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को, जो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल था, उसको इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया, तो वाशी ने जवाब दिया कि आप मुझे अपने दीन की तरफ बुला तो रहे हैं, हालांकि मैंने कत्ल भी किया, जिना भी किया, शिर्क भी किया। और कुरान में है कि जो जिसने ऐसे गुनाहों का इर्तकाब किया, वो अपने वबाल का, अपने गुनाहों के वबाल का मजा चखेगा कयामत के दिन। तो मैं तो ये सब गुनाह कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन, मगर वो आदमी जिसने तौबा कर ली, ईमान ले और नेक अमल किए। तो वाशी ने कहा, ये तो बड़ी कड़ी शरायत है, हो सकता है मैं ये शरायत पूरी ना कर सकूं, तौबा करके ईमान लाके और साले अमल का दर्जा ना पा सकूं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला सिर्फ शिर्क कह के अल्लाह ताला उसको माफ नहीं कभी करेगा, वयग़फिरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ कर दे। वाशी ने कहा, मुझे तो अब ये है कि पता नहीं मेरी मगफिरत हो या ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया ली मई है, अच्छा जिसके लिए अल्लाह चाहे, तो हो सकता है अल्लाह ताला मुझे ना माफ करे। तो फिर ये आयत आई, कुल या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, कह दीजिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला सारे ही गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहू वल गफूर रहीम, बेशक वो तो गफूर रहीम है। वाशी ने कहा, हाँ अब मुझे अपनी निजात की उम्मीद हो गई। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, इस वुसते करम और शफकत की कोई इंतहा है कि जिन्होंने अल्लाह कि दोस्तों के खून से अपने हाथ रंगे हों, इन्हीं को दावते तौबा और मगफिरत दी जाती। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इस तरह दुआ मांगा करते थे, अल्लाह अगरचे मैं इस बात के काबिल नहीं हूं कि तेरी रहमत तक पहुंच पाऊं, लेकिन तेरी रहमत तो इसकी काबिल है कि मुझ तक पहुंच जाए, क्योंकि रहमतु का वसियत कुल्ला शही, हर चीज हर शय को तेरी रहमत ने घेरा हुआ है, हर एक चीज पे छाई हुई है। तो मैं भी तो एक शय ही हूं, लिहाजा तेरी रहमत मुझे भी शामिल होगी, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह अकबर। तो कभी भी हम अल्लाह ताला की रहमत से भी मायूस नहीं हो सकते, और कभी भी उसकी मगफिरत से हम मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी रहमत भी वसी है और उसकी मगफिरत भी वसी है। और अल्लाह ताला का ये नाम जो है, ये यानी इंसान के अंदर से हसद को खत्म कर देता है। इसलिए क्योंकि देखें, हसद इंसान करता है कि फलां को ये चीज क्यों मिल गई, फलां को क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिल गया। हालांकि अल्लाह ताला के इस नाम को अगर आप यकीन के साथ लें कि वासे और मगफिरा है, वासे और अलीम है, वो सत वाला है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला के पास बहुत वुसत है, वो मुझे दे सकता है। अगर उसको उसने दिया तो मुझे भी तो दे सकता है, तो मैं ऐसे जलस क्यों हूं। ठीक है ना, जलस इंसान कब होता है, मसलन है कि कहीं कोई चीज बट रही है, असल कहीं किसी को इनाम दिया जा रहा है, तो एक को इनाम मिल गया या एक को प्रमोशन मिल गई, तो बाकी जेलस हो जाते हैं, इसको क्यों मिल गई, इसको मिल गई, हमें मिलनी चाहिए थी। कि अल्लाह ताला ने जालूत और तालूत का जहाँ पे किस्सा बयान फरमाया सूरह बकरा में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उन लोगों ने कहा जो बनी इसराइल थे, उन्होंने कहा कि तालूत को क्यों बादशाहत दे दी गई। हमारा ज्यादा हक है बादशाह पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाह अता फरमा दे, वो बड़ा वसत वाला है, यानी वो आपको भी दे सकता है, किसी को भी कोई नेमत दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके खजाना में कमी हो गई, एक को मिल गई तो दूसरों को नहीं मिल सकती। एक को अगर इनाम देखे, यहाँ पे दुनिया में इसलिए होता है कि दुनिया में वसत नहीं है। अब एक कंपनी में एक को ही प्रमोशन मिलनी है, एक जगह पे एक को ही इनाम मिलना है, या एक जगह पे एक कोई कोई मतलब कोई बड़ा बोनस मिलना है, तो दुनिया में ये हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की जन्नत में भी वुसत है, बल्कि इतनी वुसत है कि फरमाया उसकी वुसत ऐसी है कि उसका अर्ज़ी जन्नत इतनी बड़ी है, उसका अर्ज़ तूल नहीं, तूल हालांकि ज्यादा होता है, यानी लेंथ किसी चीज की हमेशा ज्यादा होती है, उसकी विड्थ कम होती, उसकी विड्थ ही आसमानों जमीन के बराबर है। लेंथ का तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कितनी होगी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप कपड़ा भी खोलते हैं, आप देखते हैं ना उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, हमेशा लेंथ ज्यादा होती है। लेंथ की तो जितना मर्जी थान खोल लो आप। तो जन्नत का ये बताया गया कि उसकी तूल नहीं अर्ज इतना बड़ा है कि आसमानों जमीन के बराबर वो जन्नत कितनी वसी है। आप सारे जन्नत हासिल करना चाहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे किसी को खींचोगे तो मैं आगे जा सकती हूँ। जैसे रेस में एक नहीं आगे बढ़ के तो उसने जीतना होता है, बस बाकी तो सारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, पीछे वालों का कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन वाले तो ठीक है। अब वो कहे कि मैं इसको पीछे करूं तो मैं आगे जाऊंगा, चलो उसके अंदर तो समझ आती है, लेकिन जन्नत अल्लाह ताला की ऐसे सारे चल पड़ो वो सबको दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी को नीचे करना पड़ेगा तो फिर आप जन्नत तक पहुंच सकते हैं, नहीं, सारों को ही अल्लाह ताला दे सकता है। इसी तरह और भी चीजों में रिस्क है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है ना, तो आपको ये नहीं करने की जरूरत कि आप किसी को पीछे करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोगों के लिए तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको कहीं और से अता फरमा देगा। तो लोगों से जेलस मत, तो उसको क्यों नेमत मिल गई, वो नेमत देने वाला जो है उसके खजानों में कोई कमी है कि वो आपको नहीं दे सकता उसको दे सकता? वो ये नहीं होगा कि उसको दे के उसके खजाने कम हो गए हैं तो अब आपको कैसे मिलेगी, नहीं, उसके खजानों में भी वसत है। इज्जत के खजाने देख लो, रहमतों के खजाने देख लो, माल के खजाने देख लो, और जितनी नेमते हैं उसके खजाने देख लो, उसके खजाने तो भरे हुए हैं, वो तो सबको भी अता फरमा दे। अव्वल आखिर सारे के सारे तुम खड़े हो जाओ, हदीस कुदसी में आता है, सब अल्लाह ताला से मांगो, इतना मांगो इतना मांगो, जितनी आपके जहन में बातें आती है ना सारी चीजें मांग लो, सब मांगो, जस्ट से इट, जो कुछ आपके दिमाग में आता है सब मांग लो, और अल्लाह ताला फरमाता है सबको भी वो दे दे। तो ऐसे है जैसे आप सुई समंदर में डाल के निकालो, क्या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? क्या समंदर में कोई कमी आएगी? अल्लाह ताला के खजाना में इतनी भी नहीं कमी आती। अल्लाह हू अकबर, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो सारों को ही अता कर दे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो कभी इस चीज के ऊपर परेशान ना हो, उनको मिल गया, उसके पास इतना आ गया, उसके बच्चे आगे निकल गए, मेरे भी बच्चे आगे निकल सकते, उस रब ने अपने खजानों में से उसको अता किया, मुझे भी दे सकता है। तो उस अल्लाह से मांगा करें जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो अलवासे है। क्यों लोगों की तरफ देख के उनसे हसद करते हैं? उसके पास ज्यादा गाहक आ गए, उसकी अगर दुकान चल रही है तो मेरी दुकान पीछे हो जाएगी, मेरे दुकान में कम होंगे, मैंने उसको कारोबार के गुर बता दिए तो लो जी उस वो भी उसके भी कारोबार चल पड़ेगा, तो फिर हमारा तो हमारी तो मतलब कमी आ जाएगी हमारे रिस्क में। नहीं, वो रब जो उसको रिस्क देगा वही तुम्हें भी रिस्क देगा, तुम्हें कमी नहीं आती। तो अलवासे जो है ना, इतना जबरदस्त अल्लाह ताला का नाम है कि आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपने तो जिससे लेना है उसके तो खजाने कम नहीं है, आपने इन लोगों से नहीं लेना कि वो उस इसके पास मिल गया, इसको दे दिया उसने तो मुझे नहीं फिर मिलेगा। आपने उस रब से लेना है जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, ये सोच के उसको पुकारें, उससे उम्मीद रखें, उससे अपनी जरूरियात कहें। वो एक इसराइली रिवायत है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हुई थी, एक दफा उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मखलूक की 1 साल की मेजबानी की इजाजत दे दे।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारे लिए तो मुमकिन नहीं है। सुलेमान अलैहि सलाम ने एक हफ्ते की इजाजत चाही, चाहे दोबारा ये कहा गया ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। आखिर उन्होंने कहा मुझे अल्लाह एक दिन की इजाजत दे दे, तो सुलेमान अलैहि सलाम को इजाजत दे दी गई। तो उन्होंने सारे जिन और इंस को, जानवर माल मवेशी और जितना भी इधर उधर फल वगैरह ये सब था, इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जब ये सारी चीजें जमा हो गई तो जानवरों को जिबा करने के लिए बड़ी बड़ी देगों में पकाया गया, हवा उन पर चलती थी ताकि खाना खराब ना हो। इतना लंबा दस्तरखान बिछाया गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई एक एक महीने की मुसाफत के बराबर थी। फिर सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से समुंदर की मखलूकात की जियाफत की इजाजत चाही, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मछली को हुक्म दिया कि वो पहले दावत में शरीक हो। चुनाचे मछली ने वो सारी चीजें खा ली जो महीनों का दस्तरखान बिछाया हुआ था और मजीद तलब करने लगी। तो सुलेमान अलैहि सलाम ने पूछा क्या तेरे पेट नहीं भरा? उसने कहा मैं तो दिन में 3 दफा ऐसा खाती जितना आपने एक वक्त में तैयार किया था। तो सुलेमान अलैहि सलाम सजदे में गिर कर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने लगे, अल्लाह हू अकबर, कि अल्लाह ही खिला सकता है, अल्लाह ताला ही पिला सकता है। अगर इसमें सच्चाई या क्या है, इसराइली रिवायत है, लेकिन हमें इससे असल जो सबक मिलता है वो ये कि इंसान किसी को नहीं कुछ दे सकते, वो अल्लाह ताला की जात है जो सबको खिलाती है। तो इसलिए उसके ऊपर अपनी नजर रखे, उम्मीद उससे रखा करे, ना कि किसी और से भी। ये देखे, ये अल्लाह ताला का नाम कुराने पाक में इस तरह से आया है, एक जगह सूरह बकरा में आया है, वहां पे जहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में दो तो अल्लाह ताला तुम्हें 700 गुना देगा। ये ऐसे ही है जैसे तुम एक दाना डालो जमीन के अंदर और उससे 7 बाले निकले, हर बाल के ऊपर 100 100 दाने लगे, जैसे सिट्टे के ऊपर होते, 700 टाइम्स करके अल्लाह ताला देगा, क्योंकि वो अलवासे है, वो वसत वाला है। तो घबराना नहीं कि तुम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो, अल्लाह मेरा तो इतना पैसा चला गया, इसमें जकात इस दफा इतनी देनी पड़ेगी, ओहो सदका करने से मेरे इतने कम हो गए, नहीं घबराना ना, उसके खजाने बड़े वसी हैं। इस तरह सूरह नूर में जब निकाह की बात आई तो वहां पे फरमाया कि वो निकाह यानी तुम करो, क्योंकि ये जो निकाह है ये किस फकीर को भी गनी कर देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से कर देगा, क्योंकि वो वासे अलीम है। तो निकाह करने से मत डरो कि हम खाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से, वो अलवासे है। यानी अब निकाह करके कोई इंसान फिर ये नहीं कि हाथ पैर तोड़ के बैठ जाए, मगर जो वो रिस्क कमाने के लिए जाएगा अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। इसी तरह जब तलाक की आयात आती हैं तो वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि औरत डरती है ना, सूरह निसा में है ये, औरत डरती है कि तलाक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मैं कहाँ से खाऊंगी क्या होगा, तो वहां पे भी आया अल्लाह ताला वासे है, वासे उन अलीम है, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है ना, वो उसके खजानों में इतनी वुसत है कि उसको परवाह नहीं है, वो तुम्हें भी खिलाएगा जहां उसकी सारी मखलूक को खिला रहा है। तो इसकी फिक्र ना करो कि कहाँ से खाएंगे, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह एक हदीस बड़ी प्यारी, अल्लाह ताला अपना हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है रात को ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, और अपना हाथ फैलाता है दिन को ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें, और वो ऐसा करता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकल आए। यानी इंसान अल्लाह ताला की वुसत को देखे कि अल्लाह ताला की माफ करने में कितनी वुसत है, कि वो रात को भी अपना हाथ फैलाता है कि सारा दिन तुमने गुनाह कर ली है ना, अब ये ना सोचना हाँ अभी हज पे जाएंगे तो तौबा कर लेंगे, हाँ अभी तो मेरे तौबा करने के थोड़ी दिन है, अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा होऊंगा तो तौबा कर लूंगा, अभी तो मैंने जैसे और गुनाह भी हो जाने, एक ही दफा तौबा करूंगा, नहीं, वो देखो जिसने माफ करना है वो दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात गुनाह हो गए हैं तुमसे ना, तो अभी भी तौबा कर लो, रात को हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाहगार तू अब तौबा कर ले, जिसने माफ करना है वो हर दिन और हर रात को अपना हाथ फैलाता है, और जिसको तौबा की जरूरत है वो देखो परवाही नहीं करता। तो कभी जज्बात से मगलूब हो के, या कभी किसी के कहने पे हमसे कोई गलती हो जाती है, या कभी अपने नफ्स के हाथों या शैतान के वसवास में आके कभी गलती हो जाती है, तो फौरन तौबा करें, देर ना लगाएं उसके अंदर, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। आज हमारा जो जिक्र है वो है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कथीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम व असीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में दाखिल होते थे तो ये कलिमात, यानी चाहे आप सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कह दें, बाज रिवायात में ये कलिमात भी आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात कहा करते थे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका की जगह। तो ये बड़े अजीम कलिमात हैं। और मुस्लिम में ये रिवायत आती है, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तो एक आदमी ने बुलंद आवाज से ये कहे, आपने फारिग होकर नमाज से तो ये पूछा कि किसने कहे, उसने कहा मैंने। आपने कहा मुझे ताज्जुब हुआ कि आसमान से मैंने देखा कि फरिश्ते आए हैं और सबों की ये कोशिश है कि वो इन कलिमात को लें। 13 की तादाद बताई कि इतने फरिश्ते उतरे और दरवाजे आसमान के खोल दिए गए कि ये कलिमात आसमान की तरफ चढ़े। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं इसके बाद मैंने कभी ये कलिमात कहने नहीं छोड़े। तो ये बड़े अजीम कलिमात हैं, इसलिए आप इनको कहा करें। ये तस्बीह भी बहुत प्यारी है। इसके बाद भी आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाएगा, क्योंकि उसको अपनी तारीफ पसंद है और वो अलवासे है, वो सारी दुआओं को सुनने वाला है, वो सारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तो आज जो हमारी जो दुआ है वो दुआ है जिसमें भी बख्शिश की हम दुआ करेंगे, और इस दुआ का नाम एक दिया गया और वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। सैयदुल इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या, इस्तिग़फ़ार के जितने कलिमात हैं उनकी सरदार, यानी ये जुमले जो हैं ये सरदार हैं सारे इस्तिग़फ़ार के कलिमात की। तो इन इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये सुबह भी पढ़ने हैं और शाम को भी। और ये वो कलिमात हैं कि अगर सुबह को पढ़े और शाम से पहले मौत आ गई तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा, शाम को पढ़ेंगे सुबह से पहले मौत आ गई तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। ये क्या, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत औजु बिका मिन शर्री मा सनातु अबू उलक बि निअमतिका अलैया व अबू उबि ज़म्बी फ़ग़फिर ली फ इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। तो ये वो कलिमात हैं जिसमें इंसान एक तो तौबा इस्तिगफार करता है, अल्लाह तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक तेरे साथ जो अहद किया वादा किया उस पर कायम हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ, पनाह में आता हूँ तेरी, मिन शर्री मा सनातु जो भी मैंने गुनाह किए उसके शर से, अबू लक बि निअमतिका अलैया अल्लाह मैं इतराफ़ करता हूँ तूने मेरे ऊपर बड़ी नेमतें की हैं, और मैं ये भी इतराफ़ करता हूँ बिदम्बी अपने गुनाहों का भी इंसान इतराफ़ करता है, और फिर फ़ग़फ़िर ली अल्लाह मुझे माफ़ कर दे क्योंकि कोई और नहीं माफ़ कर सकता गुनाहों को मगर सिर्फ तू। तो ये बहुत अजीम कलिमात हैं, इसलिए इंसान अपने गुनाहों का इकरार भी करे और अल्लाह ताला के सामने ये अकीदा पेश करे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और किसके पास जाऊँ मैं कि मैं किसी और जगह जाके फिर मैं तौबा इस्तिगफार करूँ, किसी और से कहूँ, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, तू ही मेरा रब है ना, तूने ही मुझे पैदा किया, अल्लाह तेरे पास ही आऊँगा कि तू मुझे बख्श दे, क्योंकि मेरे पास तो और कोई जगह नहीं कि मैं जहाँ जाके और अपनी बख्शिश मांगूँ। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो बख्श देगा क्योंकि वो बड़ा बख्शिश करने वाला है, वो अलवासे है, अलवासे। ये इसको जहन में रख के ये दुआ मांगिएगा। आपको पता है कि जो आपको वो बद्दू का वाकया याद होगा जिसने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया था, तो सहाबा दौड़े थे कि इसको ये मस्जिद में पेशाब कर रहा है उसको रोकने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया कि मत इसको फारिग होने दो, कोई बात नहीं है, और उसके बाद ऊपर पानी बहा देना। तो जब जानते जब वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिखाया समझाया कि देखो इस तरह से नहीं मतलब करना ना, तो उसने उसके बाद पता है क्या कहा, उसने कहा अल्लाह मेरे ऊपर रहमत कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत कर, सिर्फ बस हमारे पर रहमत कर किसी और के ऊपर ना करना। तो आपने फरमाया तुमने अल्लाह की रहमत को मुकय्यद कर दिया, यानी नैरो कर दिया तुमने का मतलब, यानी सिर्फ मैं और ये इनके ऊपर रहमत हो और किसी पे ना हो, अल्लाह की रहमत सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए है, उसकी रहमत में वसअत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अल्लाह ताला की रहमत से हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी बख्श दे और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमतों का नुजूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदुल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।